कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज
Cristo
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ ಏಕ್ ಸ್ಕಂದ ದಶ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 57 ಕೀರ್ತಿಮಂತಂ ಪ್ರಥಮಜಂ ಕಂಸಾಯ ಆನಪದುಂದುಭಿಃ ಅಪರ್ಯಾಮಾಸ ಕೃಷ್ಟೇನ ಸಹ ಅನೃತಾತ್ అతి విప్లవ. కీర్తిమంతం ప్రథమజం కీర్తిమంతం ప్రథమజం కంసాయానకదుందుభిః అర్పయామాస కృష్ణేన సోర్తాద్ అతి విప్లవః. సోనుతాది విప్లవ. కీర్తిమంతం ప్రథమజం కంసాయానకదుందుభిః అర్పయామాస కృచ్ఛ్రేణ సోనుతాది విప్లవః. కీర్తిమంతం ప్రథమజం జ్ఞాయానకదుందుభిః అర్పయామాస కృచ్ఛ్రేణ సోనుతాదతి విప్లవః.
శబ్దార్థ ఇస్ ప్రకార హే కీర్తిమంతం. కీర్తి నామక కీర్తి కీర్తిమాన్ నామ్ సే ప్రథమజం पहले पहला पहले पहल जन्म शिशु कंसाया कंस को आनक दुंदुभि वसुदेव द्वारा अपर्यामास अर्पयामास दे दिया गया कृच्छ्रेण बड़ी मुश्किल से सहा वह वसुदेव अनृतात झूठा बनने के भय से वचन भंग करने से अति विप्लवः अत्यंत भयभीत। अनुवाद और तात्पर्य दिव्य ग्रंथ एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की चाय। अनुवाद। वसुदेव आध्यात्मिक विहल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। तात्पर्य, वैदिक पद्धति में जो ही कोई बच्चा विशेषतः पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता विद्वान ब्राह्मणों को बुलाता है और बच्चे की कुंडली के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। इसे नामकरण संस्कार कहते हैं। इस तरह वर्णाश्रम धर्म पद्धति में 10 संस्कार होते हैं जिनमें से नामकरण संस्कार एक है। यद्यपि वसुदेव के प्रथम पुत्र को कंस के हाथों सौंप दिया जाना था किंतु उसका नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और उसका नाम कीर्तिमान रखा गया। ऐसे नाम जन्म के तुरंत बाद रखे जाते हैं। ओम अज्ञानानंदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणलितांशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ चिरपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध का ये पहला अध्याय में अभी वसुदेव ने वचन दिया था देवकी को बचाने के लिए तो उन्होंने कहा कि कंस को कि आपका भय, आपका मृत्यु का भय जो है देवकी से नहीं बल्कि देवकी के पुत्रों के द्वारा है, इसलिए आप ये सोचो कि मैं आपको मेरे जितने पुत्र हैं उनको सौंप दूंगा। तो कंस जैसा क्रूर राक्षस था, असुर था, लेकिन उनका हृदय भी पिघल गया वसुदेव की बात सुन के, इसलिए आ गया धीरा धीर अधीर जनप्रियो प्रिय करो। धीर व्यक्ति और अधीर व्यक्ति, सज्जन लोग भी और दुर्जन लोग भी, सभी लोग साधु का जो हृदय को देख के उनका हृदय पिघल जाता है, साधुओं का वचन सुन के उनका हृदय पिघल जाता है। ये षट गोस्वामी गण ऐसे थे कि वो दोनों के लिए प्रिय थे, दुर्जन को भी प्रिय थे और सज्जनों के लिए प्रिय थे। तो इधर भी कम वसुदेव का बात सुन के उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने साम देव वेद और दान ये सब उन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने ज्ञान भी सुनाया था, सब कुछ करने के बाद भी कंस का हृदय नहीं पिघला। लेकिन वसुदेव की जो निधि व्यक्तित्व है, सत्यवादी का जो व्यक्तित्व है, सत्य निष्ठा जो है, उसके ऊपर कंस ने सोचा वसुदेव जो भी कहता वो सही है, यानी वो अपने सत्य वचनों के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। यानी कंस जैसा असुर व्यक्ति का विश्वास जीतना साधारण चीज नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान सुनने के बाद भी उनका हृदय पिघला नहीं है, लेकिन वसुदेव के जो सत्य वचन है, मैं आपको मेरे पुत्रों को आपको दे दूंगा, आप उसका चिंता मत कीजिए, देवकी को आप छोड़ दीजिए, तो ये बात सुन के तुरंत कंस ने किया क्या किया, देवकी को छोड़ दिया। अभी वसुदेव का वचन पूरा करने का समय आया। वसुदेव और देवकी का पहला पुत्र हुए, पहला पुत्र का नाम उन्होंने रखा कीर्तिमान। ये श्री राधा गिरधार भगवान की जगन्नाथ बलदेव राम की, तो कीर्तिमान आप पिछले कुछ लोगों में जाने होंगे, ये छह पुत्र कोई और नहीं है मरीची के हैं, जो जिनको उद्धार होना था उसकी वजह से उनका जन्म इधर हुआ। लेकिन श्री प्रभुपाद की तात्पर्य में अपना जो नाम संस्कार विधि के विषय में कहते हैं, नाम संस्कार विधि कितना महत्वपूर्ण है इसके विषय में, या संस्कार कितने महत्वपूर्ण है इसके बारे में ज्यादा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं आखिरी लाइन में कि अपनी परपोट के अपनी तात्पर्य के आखिरी में, कंस को या वसुदेव को मालूम था कि अभी मेरा पुत्र को कंस को देने वाला हूं और कंस उसको मारने वाला है, लेकिन मालूम होने पर भी उन्होंने नामकरण संस्कार किया। यानी इससे पता लगता है कि नामकरण संस्कार कितना महत्वपूर्ण है। तो नामकरण संस्कार कैसा होता है, वैसे दशविध संस्कार, दस संस्कारों में एक संस्कार है, वैसे दस और छह गौण हैं और दस प्रमुख हैं, उनमें से एक है नामकरण संस्कार। बच्चे का जन्म लेने के बाद जातक कर्म संस्कार होता है, जातक कर्म संस्कार के बाद ये नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के पहले एक छोटी सी संस्कार होता है, बच्चे को जब बाहर लेके जाते हैं पहली बार घर से भगवान के दर्शन कराने के लिए, जिन विग्रह की जिन भगवान से प्रार्थना किए थे बच्चे की हित के लिए, उसका दर्शन कराने के लिए बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, वो प्रायः दसवां दिन होता है ब्राह्मणों का परिवार के लिए, या अन्य परिवार लोगों के लिए कुछ 12 या 15 या 30 दिन के बाद उस बच्चे को घर से लेके जाते हैं। तो उस दिन जब बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, कभी कभी उसी दिन नामकरण संस्कार होता है, दसवां दिन, कभी 30वां दिन होता है, कभी 101वां दिन होता है, कभी कभी एक साल के बाद होता है नामकरण संस्कार। तो वसुदेव ने क्या किया, जन्म लेते ही उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया, क्योंकि नामकरण संस्कार में बहुत शक्ति है। तो नामकरण संस्कार में सबसे पहला विधि ये होता है कि पिताजी अपने पुत्र को अपने हाथ में लेके क्या कहते हैं, वो एक नाम देते हैं। ये जो नाम देने के समय आवाहन करते हैं, क्या आवाहन करते हैं, भगवान को आह्वान करते, आप मेरे पुत्र के अंदर निवास कीजिए, क्योंकि वो आपका दास है, तो कुछ नाम बोल के कुछ दास करके या वो नाम के अंदर भी कोई भक्त का नाम या कोई और ऐसे नाम रखते हैं जिसके द्वारा पिताजी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये बच्चा आपका सेवक है, तो सेवक होने के नाते आपका सेवा तभी कर पाएगा तो अब आप उपस्थित रहेंगे, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप उपस्थित रहिएगा। तो ऐसे अनेकों अनेक अंगों को स्पर्श करते हैं, नासिका को, मुख को, कानों को स्पर्श करके, इस प्रकार के कुछ मंत्र है, बड़ा लंबा छोटा विधि है, विधि के द्वारा वो संस्कार होता है। उसके द्वारा उसके बाद भगवान काल रूप में व्यक्त है इस जगत में, इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षेत्र प्रबुद्ध। ये भगवान की काल रूपी जो शक्ति है उनको प्रार्थना करते हुए पिताजी कहते हैं कि हे काल देवताएं या समय के अलग अलग प्रकार की देवता होते हैं, तो प्रार्थना करते दिन की जो अधिष्ठात देव है तो उनसे प्रार्थना करते कि आप ये बच्चे को रात की देवता को सौंपिए, और रात की जो अधिष्ठात देवी हैं उनको प्रार्थना करते कि आप दिन की देवता को सौंपिए, दिन और रात की जो देवता उनको कहते हैं कि आप अगले दिन को सौंपिए। तो वैसे प्रार्थना करते हैं कि ये पक्ष की जो देवता है यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, पक्ष की देवता से प्रार्थना करते हैं कि ये पक्ष की देवता आप, शुक्ल पक्ष की देवता जो है आप कृष्ण पक्ष की जो देवता है उनको सौंपिए। तो ये जो महीने का जो अधिष्ठान देव होता है उनको प्रार्थना करते हैं कि आप जो है ये पूरा साल की जो एक पूरा साल का एक अधिष्ठान देव होता है उनको सौंपिए। तो एक साल की देवता से प्रार्थना करते हैं आप चिरकाल तक ये बच्चे का आयुष्य रहे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी नामकरण संस्कार में ये सब हुआ है, नामकरण संस्कार के करने के समय वसुदेव ने ये सब किया था। अभी वसुदेव को मालूम है कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इस बच्चे को कंस के हाथ में सौंपने वाला हूँ और कंस उसको मार दे। तब कंस वसुदेव ऐसा कोई वर्ण नहीं, कोई ब्राह्मणों को बुला के उन्होंने कुछ किया वो, क्योंकि ऐसा व्यवस्था तो था नहीं, तो वसुदेव ने क्या रखा, उनका नाम कीर्तिमान था, क्योंकि उनको मालूम है कि कंस को मार देगा, लेकिन फिर भी नाम संस्कार किया। लेकिन नाम संस्कार करने के समय में उन्होंने ऐसा नाम चुना जो जिसको कंस मार नहीं सकता। लेकिन विशेषता क्या है, ऐसा कहा गया है धर्मशास्त्र में कि हमारे पास कोई धन है उसका भय रहता है, चोरों का भय रहता है, चोर हमारा धन को छीन सकता है, हमारा आयुष्य को भी छीन सकता है, हर चीज को छीन सकता है। लेकिन ये जो यशकाये जरा मरणजम भयम, न यशकाये जरा मरणजम भयम, ये जरा मरणजम भयम, जरा यानी वृद्धावस्था का और मृत्यु का जो भय है वो यशकाये अपने यश के लिए नहीं होता है। मान लो कोई बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अद्भुत कार्य किया है, लोक कल्याण का कार्य किया है, तो उनका मृत्यु के बाद भी उनके कार्यों का या उनका यश जो है वो जीवित रहता है। तो इसलिए कहा जाता है हमारा शरीर जो है वो मरने वाला है, तो इसलिए वो मरने से पहले हमको ऐसा एक शरीर का निर्माण करना चाहिए जो इस जगत में मरने के बाद भी मृत्यु के बाद भी रहता है। वो क्या है, वो हमारी कीर्ति, हमारा यश। वैसे ही यश की कामना करना वो इतना अच्छा माना गया है, लेकिन ऐसा कार्य करना जिसके द्वारा हम यशस्वी होते हैं वो उसको संस्तुति किया गया है। ये दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। पहला क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यश प्राप्त करूं, मुझे सब लोग इज्जत दे, मुझे कीर्ति हो जाए, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, सब लोग मुझे मान सम्मान दें, लेकिन उसको तीव्र तरीके से खंडन किया गया है। लेकिन दूसरी ओर ऐसा कार्य करना जिसके द्वारा हमको कीर्ति प्राप्त हो, जिसके द्वारा हमको यश प्राप्त हो, जिसके द्वारा सब लोग हमको मान सम्मान करें, वैसे कार्यों को करना चाहिए। तो यश की लालसा की जो भावना है वो उसको खंडन किया गया, उसको दूर माना गया है। लेकिन साथ साथ में यश को प्राप्त करने वाले कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये बहुत सूक्ष्म विचार है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम यश प्राप्त करने की कीर्ति को प्राप्त करने वाली कार्यों को नहीं करते हैं, बल्कि कीर्ति प्राप्त करने की लालसा जरूर रखते हैं, ठीक उल्टा हो जाता है। अभी इनका नाम कीर्तिमान रखा किसने, वसुदेव ने रखा। तो वसुदेव ने उनका पुत्र का नाम कीर्तिमान इसलिए रखा, उनको मालूम है कि उनका मृत्यु निश्चित है, कंस उसको मारने वाला है, लेकिन मालूम होने पर भी उन्होंने ये जितने भी नाम संस्कार विधि में जहां भगवान की प्रार्थना, अन्य काल देवताओं से प्रार्थना, ताकि इसका आयुष्य चिरकाल तक रहे, हे भगवान ये जो बच्चा है आपको चिरकाल तक सेवा करते रहे, ऐसी पूरी जो संस्कार है वो सब पूरा संपन्न किया। क्यों? क्योंकि वसुदेव को विश्वास था। क्या विश्वास था? मैं अपने पुत्र को कंस को दे रहा हूं, भले उसका शरीर मर जाएगा लेकिन उसका कीर्ति रहेगी। तो क्या है वो कीर्ति, व्हाट इज दैट, कौन सा है वो कीर्ति जिस जो जीवित रहेगा उस पुत्र का? वो कीर्ति ये है, वसुदेव ने सोचा कि ये पुत्र मरने के बाद भी, लेकिन इसका मृत्यु का कीर्ति हमेशा चिरकाल तक गाया जाएगा। क्यों गाया जाएगा? क्योंकि इसका मृत्यु जो है वो कृष्ण का प्राकृत्य का कारण बना, यानी इनका मृत्यु जो है कृष्ण के साथ संबंधित है। इसकी वजह से वसुदेव ने क्या किया, उनका नाम रखा कीर्तिमान। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार एक जैसे बच्चा का जन्म होता है उस समय ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उनके जन्म कुंडली देखा जाता है, वैसे ये कीर्तिमान जो जन्म लिया है उनका जन्म कुंडली पहले से ही मालूम, कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं था, निश्चित रूप में कंस के हाथ में मृत्यु है। जन्म लेते ही मरना या गर्भ के अंदर ही मरना या मृत्यु प्राप्त करना, वे ऐसे बहुत पाप किया हुआ व्यक्ति को ही मिलता है, जैसे जिसको गर्भवास कहा जाता है, या संस्कार के बिना मर जाना, यानी गर्भ के अंदर मर जाना, या जन्म लेते ही मर जाना, जन्म लेते ही मर जाना कोई गर्भवास ही कहा जाता है क्योंकि संस्कार नहीं हुए। तो उसको वैसे जीवों को मिलता है जो बहुत सारे बच्चों को मारा है, बच्चों का खून को पिया है और बहुत दुष्कर्म किया है, बहुत पाप कर्म किया है, उसी जीवों को गर्भवास मिलता है, उसी जीवों को जन्म लेते ही मृत्यु मिलता है। लेकिन इधर वसुदेव ने क्या किया, उनका नाम क्या रखा, कीर्तिमान रखा। वसुदेव प्राय पहले के जमाने में प्राय सभी लोगों को ज्योतिष का ज्ञान हुआ करता था, ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण को बुलाएंगे तभी उनको मालूम है, औपचारिकता की ओर से ब्राह्मण को बुलाते थे, लेकिन फिर भी जब ब्राह्मण कुछ कहते थे उनको भी, अन्य लोगों को भी ज्योतिष का ज्ञान था। अभी आप गांव में जाएंगे किससे भी बात करेंगे, नहीं वो बोलेंगे ये समय ठीक नहीं है, ये समय होना चाहिए, तो वो ज्योतिष के बारे में बात करते ही है। अभी तो जितने बड़े विद्वान हो जाते हैं लेकिन फिर भी ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है। ये ज्योतिष जो है वो एक वेदांग है, कौन से समय क्या करना चाहिए और कौन सा काल किसके लिए अनुकूल है ये जानना बहुत अवश्य, इसको ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। जैसे छह वेदांगों में पहला वेद है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये जो छह वेदांगों में ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण वेदांग माना जाता है, कौन से समय में क्या करना चाहिए ज्योतिष है। अधिकांश लोग सोचते हैं ज्योतिष मतलब जिसके पास जाके मैं हाथ दिखाऊं तो बताएगा कि मुझे कब नौकरी मिलने वाला, मेरा कब शादी होने वाला है। ये जो है ज्योतिष का एक निम्न स्तर का अंग है, ये कोई महत्वपूर्ण चीज माना जाए नहीं माना। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ है टाइम साइन, जैसे आप कोई भी कार्य करना चाहते हो तो कार्य करने के लिए ज्योति की आवश्यकता है, लेकिन इससे ज्योतिष शास्त्र हम ज्योतिष इसलिए पढ़ा क्योंकि कोई भी कार्य तभी कर सकते हो आप ज्योतिष शास्त्र हो या ज्योति हो, आपको दिखाई पड़े। दिखाई पड़ना मतलब क्या है, मुझे क्या कब करना चाहिए, अंधेरा है क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन आजकल तो उस प्रकार का ज्ञान नहीं रहा, लोगों उस चीज को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में अनेकों ने जगह अपने लेक्चर्स में ये जो दशविध संस्कार, इसके बारे में बहुत बहुत जोर दिए। अब देखिए इधर कृष्ण कथा कभी शुरू होने वाला है, कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है, होने वाला है। उससे पहले प्रभुपाद जी संस्कारों के विषय में कहते हैं, ने कहा वसुदेव सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव सत्व के द्वारा, इससे उनका नाम, कृष्ण के नाम क्या है वासुदेव, और उनके पिताजी नाम क्या है वसुदेव। क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्राकट्य वसुदेव से ही होता है। तो वो वसुदेव जो कृष्ण के पिताजी है, उन्होंने क्या किया, उनके पुत्र अभी कल मरने वाले हैं, आज ही मरने वाले समझ लीजिए, वो मालूम होने पर भी उन्होंने संस्कार किया। इसका अर्थ क्या है, वो संस्कार कितना महत्वपूर्ण है वो मालूम होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ऑल द वसुदेव फर्स्ट सन वॉज टू बी डिलीवर्ड इन टू द हैंड्स ऑफ कंस, द नाम संस्कार सेरेमनी वॉज परफॉर्म्ड। ऑल दो अभी कंस के हाथ में वो बच्चा जाने वाला है, वो मरने वाला है, वो मालूम होने पर भी वसुदेव ने क्या किया, उनको नाम संस्कार किया। वैसे मान लीजिए किसी को मालूम है कि मैं कल मरने वाला हूं, क्या कोई अपने लिए घर बनाएगा, घर बनाने के लिए कोई जाके बुकिंग करेगा, ये 50 लाख का घर खरीदेगा कर मरने वाला नहीं। क्या मान लीजिए किसी को कोई पुत्र हुआ, होने पर आपको मालूम है ये पुत्र जो है कल मरने वाला है, क्या आप अपना पूरा जो जमीन जायदाद सब उसके नाम पे करोगे, नहीं करोगे, यानी कुछ भी नहीं करोगे, खाली एक ही चीज करोगे वो है शोक करोगे, यू विल बी डिस्ट्रेस। तभी प्रश्न आता है क्या वसुदेव दुखी नहीं थे, ही वॉज नॉट अनहैप्पी अबाउट इट। उनको मालूम था कि अपना पुत्र अभी कंस के हाथ में दे रहा हूं और कंस उनको मारने वाला है, तो स्वाभाविक तरीके से एक पिता को पुत्र का मोह रहता है। व्यासदेव को पुत्र का मोह था, लेकिन व्यासदेव का पुत्र का मोह तो कुछ अलग प्रकार का था, क्योंकि व्यासदेव को मालूम था कि ये पुत्र साधारण नहीं है, सुखदेव गोस्वामी है, इसलिए उनको भले ही पुत्र मोह कहा जाता है, पुत्रेतया करो अभिनेदु, जैसे भागवतम के पहला स्कंद के दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी पास सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करते हुए, तो उन्होंने कैसे स्तुति किया, सुखदेव गोस्वामी इतना महान व्यक्ति है, इतना महान संत है, साधु है, जो जन्म लेते घर से भाग गए। अगर मान लो कोई घर से भाग जाता है कोई बच्चा, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसको कोई स्तुति नहीं करता, लेकिन सुखदेव गोस्वामी हमारे ऐसे आचार्य है, तो उनका स्तुति कैसे हुआ है, जो घर से भाग गया, कब भागा, जन्म लेते घर से भाग गया। घर से भागना उनको बड़ा चीज नहीं माना जाता है, उसको निंदनीय कार्य माना जाता है। मान लो कोई माता पिता को बाकी बोले हमारे बच्चा जो घर से भाग गया, मतलब वो बच्चा जो है उसको निष्ठावान नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को तुलना किससे किया है, जो जन्म लेते ही घर से भाग गए, तो आचार्य सर ग्लोरिफाइड लाइक वन हू रैन अवे फ्रॉम द हाउस। तो और यज्ञोवेद संस्कार के बिना, सुखदेव गोस्वामी तो संस्कार किए बिना भाग गए थे, व्यास जैसे संस्कार करना चाहते थे लेकिन संस्कार किए बिना भाग गए, क्योंकि उस तात्पर्य में लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी जन्मतः वो मुक्त जीव थे, इसलिए उनको कोई संस्कार की जरूरत नहीं, इट इज रिक्वायर एनी संस्कार। तो व्यासदेव इतने महान व्यक्ति है, उनको मालूम था सुखदेव गोस्वामी महान वैष्णव है, उनके पुत्र के रूप में आया है, तो उससे मोह होना जरूर स्वाभाविक है, इट इज वेरी नेचुरल टू हैव इमोशन। ये जो इमोशंस, ये जो कोई अपने परिवार बंधुजनों के प्रति होना बहुत जरूरी है, या वो होता है स्वाभाविक तरीके से। जैसे कि प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज सब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, सब कुछ होने के बाद नरसिंह ने कहा प्रहलाद महाराज को कि आप इतना मेरे लिए किए, इतना स्मरण किए, मेरे लिए इतना कष्ट सहन किए, तो क्या वरदान चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा क्या मैं आप एक वणिक हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या मैं व्यापारी हूँ, मैं आपके लिए कुछ करूँ और आपसे कुछ मांगूँ, नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो फिर भी नरसिंह ने कहा नहीं कुछ तो मांगो, कुछ तो दो। तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा पिताजी का उद्धार कीजिए। तो वैसे बता जाए पिताजी का मृत्यु हो रहा था सामने, प्रहलाद महाराज शांत थे, उनको कोई मन में शोक और दुख नहीं था, लेकिन अंत में पिताजी के बारे में पूछा, क्यों, क्योंकि पिताजी तो है ना, कुछ भी हो तो उनका उद्धार के बारे में विचार किया। तो उसी प्रकार स्वाभाविक है कि पिताजी को पुत्र के प्रति मोह होना या कोई संबंधी के प्रति या आसक्ति होना, ये स्वाभाविक है बाय नेचर लॉ। तो क्या वसुदेव क्या दुख नहीं हुआ? वो दुख हुआ। कैसे पता लगता है? कौन से शब्द से पता लगता है? कि ये शब्द से पता रहा है कि अर्पयामास त्रिक्षेणा, ये जो तीसरा लाइन का जो आखिरी शब्द है त्रिक्षेणा, इसके द्वारा पता लगता है कि उनको दुख हो रहा था। इसे प्रभुपाद अनुवाद करते विद ग्रेट पेन। लेकिन त्रिक्षेणा शब्द का अर्थ क्या है? त्रिक्षेणा शब्द का अर्थ ये है कि बहुत दुख अंदर ही अंदर हो रहा था लेकिन बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा था। वसुदेव जब उनके पुत्र कीर्तिमान को लेकर कंस के पास गए उस समय उनको बहुत दुख हो रहा था लेकिन वो जो है बाहर व्यक्त नहीं हो रहा था। ये विशेषता है वसुदेव का। वसुदेव इतने महान व्यक्ति हैं इसलिए इस श्लोक में वर्णन किया गया है कंसे नानक दुंद भी। कंस को सीधा उनके नाम से पुकारा गया है लेकिन वसुदेव का संबोधन कैसे किया गया है? आनक दुंद भी ये शब्द के द्वारा संबोधित किया गया है। तो ये क्यों है? इसलिए क्योंकि कंस दुष्ट होने के नाते उसका नाम कंसाकार है जो मारने वाला है, जो कष्ट देने वाला है और मारने वाला है, उसको कंस कहा जाता है। और ये जो कंस है उनका नाम कंस के रूप में संबोधित किया गया है लेकिन वसुदेव का नाम आनक दुंदुभी करके संबोधित क्यों किया गया है? क्योंकि ये महान गुण वसुदेव के अंदर होने की वजह से है। क्या है वो महान गुण? बहुत दुख होने पर भी, बहुत दुख का अनुभव होने पर भी उन्होंने बाहर व्यक्त नहीं किया, उनको अंदर ही उन्होंने सहन किया, उनको दमन किया। तो ये अंदर ही अंदर सहन किया, अंदर ही अंदर दमन किया, इसके वजह से वसुदेव को आनक दुंदुभी कहा गया है। तो ये आनक दुंदुभी क्या है? आनक दुंदुभी का अर्थ ये है कि जब वसुदेव का जब जन्म हुआ था उस समय देवता लोगों ने डिंडारा पीटा था, ड्रम्स बजाए थे, तो सबको सुनाई पड़ा, जितने भी लोग थे सबको सुनाई पड़ा और इसलिए उनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। इसका अर्थ क्या है? देवता लोगों ने डिंडारा पीटा, इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि वसुदेव सत्यवादी रहेंगे और उनके वजह से शक्ति का प्राकट्य होगा, परम शक्ति का प्राकट्य होगा। तो वसुदेव सत्यवादी होने की वजह से परम शक्ति का प्राकट्य होगा। तो वसुदेव ने ये विचार किया। क्या विचार किया? जब मेरा जन्म हुआ था सब लोगों ने, देवता लोगों ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया? मैं सत्यवादी रहूंगा और मैं सत्य अपने वचनबद्ध रहूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं उसको मैं पालन करता हूं, वैसा नहीं कि मेरे वचनों का या कोई शब्दों का कोई दम नहीं है। अगर ऐसा वो देवता लोगों ने घोषणा किया, देवता लोगों ने दो बातों को घोषणा किया, एक क्या है? मैं सत्य वचन पालन करूंगा, मैं जो भी बताऊंगा उसको पालन करूंगा, सत्यवादी रहूंगा और साथ साथ में मेरे साथ में परम सत्य का प्राकट्य होगा। ये दोनों चीजों को एक साथ में बताया। तो वसुदेव ने सोचा अगर मान लो कि मैं अपने पुत्र मोह के वजह से अगर अपनी वचनबद्धता को पालन नहीं करूंगा, अगर सत्य का पक्ष नहीं लूंगा तो क्या होगा? दूसरा भी झूठा हो जाएगा। देवताओं का दूसरा बात क्या था? भगवान प्रकट होंगे। तो अगर देवता लोगों ने दोनों बातों को घोषणा किया, अगर एक चीज सत्य गलत करके साबित हो जाए दूसरा भी चीज भी गलत साबित हो जाएगा। तो ये बात को सुनते हुए सोचते हुए वसुदेव ने क्या किया? अर्पयामास त्रिक्षेणा, दमन किया, अपने हृदय में होने वाला जो दुख है उसको बहुत होने पर भी उसको दमन किया। बाहर तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना कंस को ना किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वसुदेव अभी बहुत दुखी है। जब अपना ही पुत्र को अपने हाथों से लेके जा रहे कंस के पास उसको मारो, ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति कोई पुत्र हुआ वो पुत्र को लेके पिता कर ही नहीं सकता ऐसा कार्य। अर्पयामासा, अर्पयामासा के विषय में कहा गया है अर्पय मासा का अर्थ क्या है, वसुदेव ने किसी और को नहीं बुलाया, लेके जाओ अभी क्या करें, कंस को दे देना, ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं अपने हाथों से लेके कंस के पास गए। तो क्यों गए, वही वेंट, क्योंकि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था। क्या वचन दिया था, कि मैं अपने पुत्रों को आपके हाथ में दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं किसी और के द्वारा भेजूंगा। दूसरा बात है कि कंस को अपने हाथ से अपने पुत्र को क्यों दिया, केवल वचनबद्ध होने के लिए नहीं दिया, बल्कि वसुदेव को मालूम था कि ये पुत्र का मृत्यु होगा तो उसके बाद और ही पुत्र होंगे, उनका भी मृत्यु होगा, कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो कृष्ण का प्राकट्य होने के पीछे ये छह पुत्रों का कारण है। इसलिए भगवान के प्राकट्य के पीछे ये कीर्तिमान का भी कारण है। इसलिए मैं उस कीर्तिमान जो भगवान की प्राकट्य के लिए कारण है, मैं अपने हाथ से उनका सेवा करूंगा। ये विचार है इधर। तो अर्पयामासा, स्वयं अपनी इच्छा से, अपना स्वेच्छा से, या कंस को कोई कारागार में किसी को बुला सकते, लेके इस बच्चे को कंस को दे देना, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। स्वयं अपने हाथों से अपने अंदर में दुख को दमन करते हुए वसुदेव जो है वो उनका जो पुत्र है कीर्तिमान को कंस के पास लेके गए। इवेंट नियर कंस का जब ये आखिरी लाइन में दोष है कि अंध्रतात अति पिप्लवहा वलहा। तो ये दो शब्द जो है, पहला अर्थ है कि अंध्रतात का अर्थ है फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिस, फ्रॉम द फियर ऑफ बीइंग ए लायर, यानी उनको डर था कंस वसुदेव को, मैं कहीं झूठा ना साबित हो जाऊं, इसका डर था। और दूसरा था वह वेरी मच डिस्टर्ब्ड ऑफ बीइंग अफ्रेड आदि रेहवलहा, बहुत परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब थे कंस या वसुदेव, किसकी वजह से, उनको डर था कि कहीं मैं झूठा साबित ना हो जाऊं। तब प्रश्न उठाया गया है, क्या प्रश्न उठाए हैं, कि अगर झूठा साबित होना जितना पाप है उतना ही पाप है, क्या पाप है, अपना पुत्र को किसी के हाथ में देके मरवाना, ठीक है। अभी वसुदेव के सामने दो चीजें हैं, झूठा होने का पाप को स्वीकार करें या अपना ही पुत्र को किसी के हाथ में देके मरवाने का पाप स्वीकार करें। अभी इन दो पापों में एक को चुनना था वसुदेव को। अभी वसुदेव इसके वजह से क्या थे, वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अति लवाहा, ये जो विचलित हो गए थे, मैं क्या करूं, अभी ये भी पाप है और ये भी पाप है, अभी ये दोनों पापों से मुझे डर है। क्या था, अंधकार, एक था उनका डर, दूसरा उनके हृदय में क्या भावना थी, उनको बहुत कंफ्यूज थे, विचलित हो गए थे, मैं कौन से पाप को स्वीकार करूं, दोनों करने से दोनों में मुझे पाप लगेगा और इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, और इन दोनों में मैं कौन सा स्वीकार करूं। तो वसुदेव के हृदय में दो भावनाएं थी, एक तो डर की भावना थी क्योंकि दोनों पाप है, और दूसरा प्रॉब्लम समस्या ही था, वो कंफ्यूज थे, इन दोनों में मैं कौन सा स्वीकार करूं। तो वसुदेव विचार करने लगे, क्या विचार करने लगे, पहला वाला जो पाप है यानी झूठा बनने का पाप, वो और खतरनाक है, दूसरा जो पाप है अपने ही हाथों से अपने पुत्र को देके उसको उनको मारने उनको मरवाना, ये जो पाप है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पहला वाला जो पाप है क्या है, वो झूठा साबित हो जाना, बींग ए लायर, वो अति घोर पाप है। क्यों, क्योंकि वसुदेव ने विचार किया ये जो पाप है ये भौतिक स्तर का पाप है, क्या है, पुत्र मोह, यानी ये जो बच्चा है मेरा है ना, ये मेरा की भावना से उत्पन्न हुआ जो पाप है, वो जो पाप को मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति किया जाए जो पाप है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये अपराध माना जाता है, क्योंकि ये जो परम सत्य का प्राकट्य होने वाला है, तो परम सत्य का प्राकट्य होने के लिए ही ये सब भगवान की योजना है, तो उस योजना में नहीं भाग लेना या उस योजना में भगवान के लिए मैं भगवान की प्राकृति की जो एक प्लान है उसमें भाग नहीं लेना और अपने लिए कुछ झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं उस पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो यह शारीरिक स्तर में है वो चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में जो भी तकलीफ है या जो भी पाप के रूप में माना जाता है तो उसको मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण विचार है। कभी कभी कुछ पूछते हैं, कुछ भक्त पूछते हैं या कभी कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए आता है, वो लोग पूछते हैं, प्रभु जी हमारे माता पिता को हम देखभाल नहीं कर रहे, क्या ये पाप नहीं है? तो वसुदेव के अंदर भी यही डर था, क्या ये पाप नहीं है? लेकिन उसका निराकरण क्या किया, निराकरण उनको उसका अपने आप को कैसे समझाया वसुदेव ने? वसुदेव ने इस विचार के साथ समझाया, ठीक है, मैं अपने पुत्र को मेरी आंखों के सामने मरते हुए ये देख रहा हूं, ये सच में पाप है, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है, मैं इससे बढ़कर और एक पाप को स्वीकार करने वाला हूं। क्या है वो? कृष्ण का प्राकट्य का जो विलंब हो रहा है उसको मैं स्वीकार करूंगा, वो होने नहीं दूंगा। इसलिए बेहतर है इस तरह का पाप हो चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर का जो अपराध है वो ना हो जाए। तो ये वसुदेव के अंदर एक बहुत सूक्ष्म विचार था। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वसुदेव को अगर कोई कहे कि वसुदेव देखो तुम बड़ा बड़ा सिद्धांत के साथ तुम विचार कर रहे हो, लेकिन तुम अपने पुत्र को अपने सामने देख रहे हो, मरते हुए देख रहे हो, इमरजेंसी तो ये बात है, तुमको दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं भगवान प्रकट होंगे कि नहीं, वो तो बात की बात है, आपकी सत्यवादी होने का जो फल है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इधर अपने पुत्र को मरते हुए तुम देख रहे हो, इससे इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या चीज है? जो शीघ्र तुमको देख रहे हो उसको आपको बचाना चाहिए, जो सत्यवादी होने का जो फल है वो तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस प्रश्न का जवाब देते हुए अगले श्लोक में वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया गया है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप सत्य के पक्ष लिए, सत्य का पक्ष लेने की वजह से आपको दुख मिल रहा है अभी, जैसे वसुदेव को अभी सत्य का पक्ष लेने से उनको अभी दुख मिल रहा है, लेकिन जो सत्य का पक्ष लेने के वजह से जो फायदा या सुख है वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से कुछ तो क्या करते हैं, तुरंत कुछ अभी के फायदा के लिए वो कार्य करते हैं। लेकिन वसुदेव अगले श्लोक में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार अपने आप को समझाते हैं, क्या समझाते हैं, भले ही मुझे सत्य का पक्ष लेने की वजह से अभी दुख मिल रहा है, लेकिन मैं देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं, ये सत्य का पक्ष लेने से भविष्य में या कभी और समय में कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण का निश्चित रूप में दर्शन होगा, तो इसके वजह से मुझे अभी कुछ सुख प्राप्त करने के लिए, अभी कुछ दुख का निवारण करने के लिए मैं भविष्य में कृष्ण का दर्शन जो होने वाला है उसको मैं त्याग नहीं करूंगा, अभी भले ही कितना भी दुख आ जाए लेकिन कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं अभी कितना सह उतना दुख को मैं सहन करने के लिए मैं तैयार हूं। इस बात को स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं। इससे कभी कभी जब हम कोई कार्य करते हैं ऐसा लगता है कि अरे क्या फायदा, इतना भक्ति किया क्या फायदा, कुछ तो मिला नहीं, कुछ तो कहते हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग कहते हैं, इट इज ओनली फूलिशनेस। कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं बहुत तकलीफ सहन करना पड़ता है लेकिन उसका फल जो है अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है लेकिन भविष्य में उसका फायदा होगा, तो उस फायदा, वो फायदा क्या है वो उसका विचार वसुदेव अगले श्लोक में कहते हैं। तो इसलिए वसुदेव जो भी चिंतन कर रहे हैं इस प्रकार अलग अलग प्रकार से वो मनन कर रहे हैं, ये चिंतन और मनन कर रहे हैं, उसको शास्त्र में निधिध्यास कहा जाता है। हर एक भक्त को ये निधिध्यास करना बहुत आवश्यक है। निधिध्यास का अर्थ है क्या कि आप जो जानते हैं उस जाना हुआ चीज को पहला हमारे इस प्रसंग में उसके साथ क्या संबंध है उसके ऊपर मनन करना, दूसरा वो मनन करके उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करना, उसको निधिध्यास कहा जाता है। उसको अंग्रेजी में सरल भाषा में कहा जाए उसको कॉन्टेम्पलेशन कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। यानी जब कोई दुविधा होती है या भय होती है क्या करना है क्या नहीं करना है मालूम नहीं पड़ता है, तब हमारा मन ही मन में विचार करना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति के लिए मेरे लिए क्या आवश्यक है, उसको कृष्ण को उद्देश्य में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। तो वसुदेव ने अपने पुत्र को उद्देश्य में रखते हुए निर्णय नहीं लिया, अपना जो निजी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, उन्होंने कृष्ण को उद्देश्य में रखते हुए निर्णय लिया। इसकी वजह से वसुदेव भी कीर्तिमान हुए और वसुदेव का जो पुत्र है वो भी कीर्तिमान हुए। इसलिए अभी तक हम वसुदेव के बारे में चर्चा करते हैं। अभी उनका पुत्र भले उनका मृत्यु तुरंत हो गया, उनका कुछ नहीं किया, वो बच्चा क्या किया, बस जन्म लेते क्या कर सकता है, लेकिन उनका वाक्य नाम क्या पड़ा, कीर्तिमान पड़ा। तो ये सब ये श्लोक से हमको प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। मेरी क्वेश्चन कोई प्रश्न है? तंत्रार्थ भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।